अब तीसरा प्रकार जो गुण का होता है वह होता है गंध नाम का गुण। यह जो गंध नाम का गुण है इसका लक्षण बताया घ्राण ग्राह्यो विशेष गुण माने घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका। तो नासिका इंद्रिय से ग्राह्य होने वाला जो विशेष गुण है उसको हम गंध कहते हैं। और यह गंध पृथ्वी मात्र वृत्ति ही केवल पृथ्वी में ही ये गंध रहती है, बाकी जो आठ प्रकार के द्रव्य हैं उसमें ये गंध नाम का गुण नहीं होता। अनित्य एव, और यह जो गंध है वह अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। स्वद्विविधः, वह गंध द्विविध माने दो प्रकार का होता है, सुरभि ही असुरभिश्च। सुरभि माने सुगंध और असुरभि माने दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध के भेद से गंध दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर एक शंका आई कि आपने कहा कि गंध जो है पृथ्वी मात्र वृत्ति है माने पृथ्वी मात्र में वर्तमान रहता है, तो फिर जल आदि में जो खुशबू मिलती है वो कैसे? तो उसका जवाब देते हैं कि जलादो गंध प्रतिभानम, तो जल आदि में जो गंध का प्रतिभान होता है, प्रतिभान मतलब ज्ञान होता है, वह जल में रहने वाले गंध के कारण नहीं होता, अपितु उसमें संयुक्त समवाय संबंध से जो गंध रहता है उसका प्रतिभान होता है, उसका ज्ञान होता है। तात्पर्य ये है कि जल में जो पृथ्वी का तत्व होता है वह हो गया संयुक्त, तो जल से संयुक्त हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी में समवाय संबंध से रहने वाला जो गंध गुण है उस गुण का वह प्रतिभान होता है। अर्थात जल जब लगे कि जल सुगंधित है, उसमें अगर इत्र सब डाल देते हैं या कमल का पत्ता डाल देते हैं या गुलाब का पत्ता से पंखुड़ी डाल देते हैं तो जल जो है सुगंधित हो जाता है। तो वह जो सुगंध है वो जल का नहीं है वास्तविक में, वह जल में जो आपने गुलाब की पंखुड़ी डाली है उस गुलाब की पंखुड़ी में रहने वाला जो समवाय संबंध से गंध है उसका प्रतिभान होता है, जो कि पार्थिव है, पृथ्वी में रहने वाला जो है गंध है। इस तरह से जलादो गंध प्रतिभानंतु संयुक्त समवायेन द्रष्टव्यम, जल आदि में जो गंध की प्रतीति होती है वह जल से संयुक्त जो पार्थिव भाग है उसका होता है, वह जल का नहीं होता। फिर आगे कहते हैं कि अतिमति ये गंध के विवरण के बाद फिर स्पर्श जो चौथे नंबर का है उसको बताते हैं कि स्पर्श त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो विशेष गुण। त्वगिंद्रिय माने चमड़ा वाला जो इंद्रिय है उससे त्वगिंद्रिय मात्र से ग्रहण होने वाला जो जिस जो विशेष गुण है उसका नाम है स्पर्श। पृथिव्यादि चतुष्टय वृत्ति ही, और यह जो स्पर्श नाम का गुण है विशेष गुण, यह पृथ्वी आदि चतुष्टय में रहने वाला गुण है। तो चतुष्टय है तो कौन हो गया? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार द्रव्यों में ये स्पर्श नाम का गुण रहता है। स्वच त्रिविधः, और यह स्पर्श गुण त्रिविध होता है, कौन कौन? तो शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णा शीत स्पर्श। शीत स्पर्श माने जो स्पर्श ठंडा हो, उष्ण स्पर्श जो स्पर्श गर्म हो, और अनुष्णा शीत स्पर्श माने जो स्पर्श न गर्म हो और न ठंडा हो। तो इस तरह से शीत उष्ण अनुष्णा शीत भेद से स्पर्श तीन प्रकार का होता है। उसमें उन तीनों में से शीतः पयसी, शीत स्पर्श जो होता है वो पयस में होता है माने जल में होता है। उष्ण तेजसी, और उष्ण स्पर्श जो होता है वह तेजस में होता है। और अनुष्णाशीत स्पर्श जो है वह पृथ्वी वायु हो माने पृथ्वी में होता है अनुष्णाशीत स्पर्श, और वायु में होता है अनुष्णाशीत स्पर्श। पृथ्वी मात्रे ही अनित्य, और यह स्पर्श नाम का जो गुण है ये पृथ्वी मात्र में अनित्य गुण है। पृथ्वी मात्र ही अनित्य, और आगे कहते हैं कि आप्य तेजस वायवीय परमाणुषु नित्य। पहले बताया था ना कि पृथ्वी आदि चार में रहने वाला ये स्पर्श गुण है, तो पृथ्वी में तो ये अनित्य गुण रहता है, अनित्य रूप से रहता है। और आप्य तेजस वायवीय परमाणु सुनित्य, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु में यह स्पर्श नाम का गुण नित्य रूप से रहता है। आप्यादि कार्येषु अनित्यः, आप्य आदि जो कार्य है, जो अनित्य द्रव्य है, जैसे आप्य द्रव्य, तेजस द्रव्य और वायवीय द्रव्य, इसमें यह अनित्य रूप से रहता है, जैसे कि पृथ्वी में अनित्य रूप से रहता है। एते च रूपादयः चत्वारः, ये जो चार हैं रूप आदि, रूप आदि से कौन कौन हो गए, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो चारों हैं, ये इन चारों का प्रत्यक्ष जो है कब होता है, तो कहते हैं कि महत्वैकार्थ समवेतत्वे सति उद्भूता एव प्रत्यक्षा। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श होते हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष तभी होता है जब ये उद्भूत होते हैं। उद्भूत होते हैं अर्थात उद्भूत का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष योग्य, ठीक है। तो जब ये प्रत्यक्ष योग्य होते हैं तब इनका प्रत्यक्ष होता है। और एक उसमें शर्त लगा दी कि महत्व एकार्थ समवेतत्वे सति, और जब ये महान आश्रय में विद्यमान होते हैं, रूप जिसमें रहेगा उसको हम रूप का आश्रय कहेंगे, और वह आश्रय जो है महान होना चाहिए, तभी जो है रूप रसादि जो है ये चार इनका प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए कि परमाणु में भी रूप रहता है, लेकिन उस रूप का जो आश्रय है परमाणु, वह महत्व विशिष्ट नहीं, वह महान नहीं है, महान मतलब बड़ा साइज में नहीं है, तो बड़ा साइज में नहीं है, इसलिए परमाणु में रूप रहने पर भी उस रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि महत्व एक अर्थ समवेतत्वे सति, कि महत्व से युक्त माने महत्व परिमाण से युक्त अर्थ में माने द्रव्य में रहने पर ही जो है, और उद्भूत अवस्था में होने पर ही जो है रूप रसादि जो चार हैं उसका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब आगे पांचवा जो है गुण वह क्या है, तो संख्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या। और संख्या का लक्षण बताए हैं कि संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु सामान्य गुण, या संख्या जो है यह सामान्य गुण है। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, उन सबों में विशेष गुण कहा गया था, और संख्या में जो है ना सामान्य गुण कहा गया है। आप जानते हैं सामान्य गुण कम में होता है, और विशेष गुण जो होता है वह सामान्य गुण अधिक में होता है, ज्यादा में रहता है, और विशेष गुण जो है वह कम में रहता है। तो संख्या जो है एक सामान्य गुण है, और दूसरा एकत्वादि व्यवहार हेतु, व्यवहार जो होता है ना कि अयम एक, इमौ द्वौ, इमे त्रयः, इमे चत्वारः, इमे पंच, इस तरह से जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार में हेतु जो है वह संख्या होती है। तो एकत्वादि व्यवहार हेतु सामान्य गुण संख्या, जो एकत्व आदि व्यवहार का हेतु हो और सामान्य गुण हो उसको हम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एक भ्रम को आप लोगों को दूर कर लेना है, ये भ्रम बड़े बड़े लोगों में भी होता है, पूछेंगे ना तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि संख्या क्या है, अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, पांच संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये संख्या नहीं है, ये है संख्या बान, माने संख्या से युक्त धर्मी है ये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये संख्या नहीं है। संख्या जो होता है ना वह धर्म रूप होता है, और धर्म रूप बनाने के लिए सब में त्व लगाना पड़ेगा। तो एकत्व धर्म जो है वह है संख्या, द्वित्व जो है वह है संख्या, तृत्व है संख्या, चतुष्टव है संख्या, पंचत्व है संख्या, सत्त्व है संख्या, सप्तत्व है संख्या, इस तरह से एकत्व, द्वित्व, तृत्व आदि जो है ये संख्या है, और ये सब क्या है, धर्म रूप है। और एक, दो, त्रयः, चत्वारः, ये जो है ये संख्या नहीं है, ये संख्या बान का नाम है। अब जैसे देखिए कहते हैं ना अयम एक बालकः, अब एक कौन है वहां पर, बालक है ना, तो बालक का भी संख्या होगी कि संख्यावान हो, बालक संख्या तो नहीं हो सकती, बालक क्या होगा, संख्यावान होगा। दो बालक हो तो अब दो जो है वह बालक है, तो बालक दो किसको कहा गया, बालक को कहा गया ना, तो बालक संख्या है क्या, नहीं है। तो दो का मतलब होता है द्वित्व बनतौ, तो दो बालको माने द्वित्व बनतौ बालको, एक बालक माने एकत्वान बालक, त्रय बालक मतलब तृत्व बंत बालक। तो अब जो है ना ये जो एकत्व द्वित्व तृत्व ये जो संख्या है इससे जो युक्त है उसको एक दो त्रय चतवार पंच कहा जाता है, ठीक है। तो अब भविष्य में जो है ना इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करना है, कोई पूछे कि संख्या सुनाओ तो कहना एकत्वम द्वित्वम तृत्वम चतुष्टवम पंचत्वम षट्त्वम सप्तत्वम अष्टत्वम नवत्वम दशत्वम एकादशत्वम, इस तरह ये है संख्या। हाँ, जब संख्या बान सुनाने के लिए कहे तो कहना एक द्वो त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दस, इस तरह से, क्लियर। तो चलिए यहाँ जो है कहा गया संख्या के लक्षण में कि संख्या एकत्व आदि व्यवहार हेतु सामान्य गुणः, एकत्व आदि का जो व्यवहार है उसमें जो हेतु हो और जो सामान्य गुण हो वह है संख्या। एकत्व व्यवहार क्या है कि अयम एकः इमौ द्वौ इमे त्रयः, इस तरह से जो व्यवहार होता है इसी का नाम है एकत्वादि व्यवहार। इस व्यवहार का हेतु जो है संख्या ही होती होता है। चलो आगे है एकत्वादि परार्ध पर्यंता, और यह जो संख्या है ये एकत्व आदि माने एकत्व से ये शुरू होती है संख्या, और परार्ध पर्यंता माने परार्ध संख्या तक जो है ये होती है, माने फर्स्ट जो संख्या है प्रथम जो संख्या है वह है एकत्व, और लास्ट जो संख्या है पर्यंत जो संख्या है माने लास्ट जो संख्या है वह है परार्ध। तो अंतिम संख्या न्याय दर्शन में परार्ध मानी गई है। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये परार्ध संख्या है क्या, तो ऐसा है कि एक लिख करके उसके आगे 17 शून्य लगा दीजिए, 17 जीरो लगा दीजिए, तो जो जितना बनेगा उसको कहते हैं परार्ध संख्या। तो कितना बन जाता है, तो ये बनता है लक्ष लक्ष कोटि ही, माने 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, को लक्ष कोटि माने 1,00,000 करोड़, और वह जो 1,00,000 करोड़ है, वह जो 1,00,000 करोड़ होगा उसका नाम है परार्ध संख्या। लक्ष लक्ष कोटि ही परार्ध या परार्धम, क्या कहेंगे, लक्ष लक्ष कोटि ही परार्धम। 1,00,000,000 कोटि जो है, 1,00,000,000 करोड़ जो है, उसको हम कहते हैं परार्ध संख्या। और परार्ध संख्या को लिखने में 1 लिख करके उसके आगे 17 शून्य देने होते हैं। तो इस तरह से आदि संख्या हो गई एकत्व संख्या और अंतिम संख्या हो गई परार्ध संख्या। तत्र एकत्वम द्विविधम नित्यानित्य भेदात्, उसमें नित्य संख्या और अनित्य संख्या के भेद से एकत्व संख्या दो प्रकार की होती है। एकत्वम द्विविधम माने नित्य एकत्व और अनित्य एकत्व जो है वह दो प्रकार का एकत्व होता है। नित्यगतम नित्यम, उसमें नित्य में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वह नित्य एकत्व है। और अनित्यगतम अनित्यम, और अनित्य में रहने वाली जो एकत्व रहने वाली जो एकत्व संख्या है वह अनित्य है। स्वाश्रय समवाय कारणगत एकत्व जन्यम च, अच्छा ये जो है ना अनित्यगतम अनित्यम जो कहा उसकी उसी का ये टुकड़ा है, कहा कि अनित्य में रहने वाला जो एकत्व वह अनित्य कहलाता है। और वह कैसा होता है अनित्य एकत्व, तो स्वाश्रय समवाय कारणगत एकत्व जन्य होता है। यहाँ पर स्वाश्रय में स्व शब्द से पकड़ लीजिए एकत्व उत्पत्ति को, तो स्व आश्रय माने एकत्व उत्पत्ति का आश्रय, और एकत्व उत्पत्ति का आश्रय जो है समवाय कारण, उस समवाय कारण गत माने उस समवाय कारण में रहने वाला जो एकत्व है उस एकत्व से यह जन्य होता है, माने उत्पन्न होता है। तो अनित्यगत जो एकत्व है वह एकत्व से ही जन्य होता है, और वह एकत्व कौन सा लेना है तो स्वाश्रय समवाय कारणगत एकत्व लेना है। स्व हो गया एकत्व उत्पत्ति, उसका आश्रय हो गया स्वाश्रय, उसका जो समवाय कारण है वह हो गया स्वाश्रय समवाय कारण। इसको अगर दूसरे शब्द में कहना चाहें तो कहेंगे एकत्वोत्पत्ति आश्रय समवाय कारणगत एकत्व जन्यम, माने एकत्व उत्पत्ति का जो आश्रय है समवाय कारण, उस समवाय कारण में रहने वाला जो एकत्व है उससे वह जन्य होता है। फिर आगे कहते हैं द्वित्वम च अनित्यम एव, ताकि एकत्व तो दोनों प्रकार का होता है, नित्य भी और अनित्य भी, लेकिन द्वित्व जो है वह अनित्यम एव, वह अनित्य ही होता है। तच्च द्वयोः पिण्डयोः इदम् एकम् इति अपेक्षा बुद्ध्या जन्यते। अब ये जो अपेक्षा बुद्धि की बात आई है इसमें थोड़ा सा विवेचन भी करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं इस पाठ को आज यहीं स्थगित करते हैं, अगले पाठ में इसको हम पढ़ेंगे।